दर्शन कुमार झा आपके लिए अध्याय चार दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करता है। दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष खलजी वंश का उदय। 1287 में बलबन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत में एक बार फिर उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हुई। बलबन का बड़ा बेटा राजकुमार मुहम्मद उनके जीवन में ही मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। दूसरा बेटा बुगरा खां बंगाल का शासक था और दिल्ली की राजनीति में उसे अभिरुचि नहीं थी, अतः उसके बेटे और बलबन के पौत्र कैकुबाद को दिल्ली का शासक बनाया गया। उसके समय में खलजी सरदारों का महत्व बढ़ा। उनका नेता मलिक फिरोज खलजी था जिसने बलबन के समय में ही अपनी सैनिक प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया था। कैकुबाद स्वयं एक विलासी व्यक्ति था। उसके शासनकाल में विभिन्न अमीरों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसके पूर्व बलबन ने इलबरी जाति के सामंतों को सभी महत्वपूर्ण पद दिए थे, अतः जब खलजी सरदारों का प्रभाव बढ़ने लगा तो इलबरी सामंतों ने ईर्ष्या के कारण उनके विनाश का षड्यंत्र रचा। मलिक फिरोज की हत्या की योजना बनाई गई, परंतु इस षड्यंत्र की जानकारी मलिक फिरोज को मिल गई और उसने स्वयं सत्ता पर अधिकार कर लिया। कुछ समय तक उसने बाल शासक कयूमर्स को संरक्षक के रूप में कार्य किया। कयूमर्स कैकुबाद का बेटा था जो अपने पिता के अस्वस्थ होने के कारण शासक बना था। मलिक फिरोज ने 3 महीने के अंदर ही स्वयं सुल्तान का पद ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही बलबन के वंश और इलबरी सामंतों की सत्ता का अंत हो गया। खलजी वंश के उदय के साथ ही सल्तनत की राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। मूलतः खलजी तुर्क थे, किंतु दीर्घकाल तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोल उठल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। यहाँ उन्हें शासक जाति के इलबरी तुर्कों से भिन्न समझा गया। लगभग 1 शताब्दी तक सत्ता पर इलबरी तुर्कों का एकाधिकार रहा था। इलबरी तुर्कों ने जातिवाद पर अधिक बल दिया था। राज्य की आधारशिला केवल तुर्कों के हितों की सुरक्षा उन्हें के सीमित एकाधिकार पर रखी गई थी। बलबन के काल में विरोधी तत्वों के दमन के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाए गए, किंतु खलजी दल की सरल विजय यह सिद्ध न कर सकी कि जातीय निरंकुशता और अधिक समय तक राज नहीं कर सकती। खलजियों की नसों में शाही खून नहीं था, वे सर्वसाधारण वर्ग के थे। उनके राज्यारोहण ने इस मिथ्या धारणा को समाप्त कर दिया कि प्रभुसत्ता पर केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही एकाधिकार होता है। इसके अतिरिक्त खलजी वंश ने भारतीय मुसलमानों को बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की। इससे भी कुलीनता के सिद्धांत के स्थान पर प्रतिभा को अधिक महत्व दिया गया। खलजी शासकों ने विशेषकर अलाउद्दीन ने राजनीति को धर्म से पृथक रखने का प्रयास भी किया और अलाउद्दीन द्वारा साम्राज्य विस्तार का एक नया अध्याय सल्तनत के इतिहास में आरंभ हुआ। इन सभी कारणों से खलजियों द्वारा सत्ता पर अधिकार केवल एक वंश के स्थान पर दूसरे वंश की स्थापना के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक व्यवस्था की समाप्ति तथा एक भिन्न व्यवस्था के आरंभ का सूचक था। जलालुद्दीन खलजी। खलजी वंश का संस्थापक मलिक फिरोज था जिसने सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात जलालुद्दीन की पदवी धारण की। उसने बलबन के शासनकाल से एक कुशल नायक के रूप में ख्याति प्राप्त की थी और मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में सत्ता का जो संघर्ष सुल्तान कैकुबाद और उसके नायब निजामुद्दीन के बीच छिड़ा, उससे मलिक फिरोज का राजनीतिक महत्व बढ़ा, क्योंकि कैकुबाद ने निजामुद्दीन का प्रभाव तोड़ने के लिए मलिक फिरोज को आगे बढ़ाया। इससे इलबरी सामंतों में ईर्ष्या की भावना जगी और उन्होंने फिरोज की हत्या की योजना बनाई। तब तक कैकुबाद भी लकवा के कारण अपंग हो चुका था और सिंहासन पर उसके पुत्र कयूमर्स को बाल शासक के रूप में बैठाया जा चुका था। मलिक फिरोज ने आत्मरक्षा में बाल शासक कयूमर्स का अपहरण कर स्वयं को उसका संरक्षक घोषित कर दिया। अपने विरोधी सामंतों की शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर उसने स्वयं राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस तरह 1920 में खलजी वंश की सत्ता का इतिहास आरंभ हुआ। जलालुद्दीन उदार विनम्र दयालु व्यक्ति था, परंतु शासक की सत्ता का दृढ़ उपयोग वह नहीं कर पाया। बलबन की कठोर शासन व्यवस्था के बाद उसका उदार शासन दुर्बलता का प्रतीक माना जाने लगा। खलजी सामंतों का युवा वर्ग विशेषकर उसकी उदार नीतियों से अप्रसन्न था। उसके सत्ता संभालने के तुरंत बाद असंतुष्ट इलबरी सरदारों ने भी विद्रोह छेड़ दिया, परंतु उसने दमन करने के बजाय उन्हें क्षमा कर दिया। साम्राज्य विस्तार में भी उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई। रणथंभौर पर उसका अभियान विफल रहा और मंगोल आक्रमणकारियों के साथ भी उसने संधि कर ली। उसने युवा खलजी सरदारों के आशा के विपरीत इलबरी सामंतों को अपदस्थ करने के उपाय भी नहीं किए। जलालुद्दीन की कमजोरी और अलोकप्रियता का लाभ उठाकर उसके भतीजे एवं दामाद अली गुरस्प ने सत्ता पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा। वह उस समय कड़ा अर्थात इलाहाबाद क्षेत्र का प्रांतपति था और एक सफल सेनानायक भी। भिलसा चंदेरी और देवगिरी के अभियानों में उसने काफी धन लूट के रूप में अर्जित किया था। उसके समर्थकों में असंतुष्ट खलजी सरदार भी थे। अली गुरसप ने जलालुद्दीन को कड़ा बुलाकर धोखे से उसकी हत्या कर दी और सत्ता पर अधिकार कर लिया। यह बात 1296 में हुई। खलजी साम्राज्यवाद, अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन का 20 वर्षीय शासनकाल सल्तनत के इतिहास में एक रचनात्मक अध्याय प्रस्तुत करता है। उसके पूर्व दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काम पूरा हो चुका था और बलबन द्वारा एक शक्तिशाली राजतंत्र की संस्था का विकास भी हो चुका था। इन दोनों परिस्थितियों ने सल्तनत के क्षेत्रीय विस्तार के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अलाउद्दीन की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी इस कार्य में सहयोगी सिद्ध हुई, परंतु साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी अनिवार्य थे। शासन तंत्र का जो स्वरूप ममूलक शासन में विकसित हुआ था वह साम्राज्य विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं था, अतः अलाउद्दीन ने प्रशासनिक क्षेत्र में मौलिक सुधार भी किया। इस प्रकार उसका शासनकाल साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासनिक सुधार दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। पृष्ठभूमि, शासक बनने के बाद अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय किए। दिवंगत सुल्तान जलालुद्दीन खलजी के पुत्र अभी जीवित थे, इसमें अरकली खां मुल्तान का प्रांतपति था। उसने अपने संबंधियों और समर्थकों को भी शरण दे रखी थी। जलालुद्दीन के पुत्रों की उपस्थिति में गद्दी पर अलाउद्दीन का अधिकार सुरक्षित नहीं था, इसलिए अलाउद्दीन ने मुल्तान पर अधिकार कर अरकली खां, कद्र खां और उसके समर्थकों को बंदी बना लिया। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन ने पुराने सामंतों को भी विस्थापित कर अपने नए समर्थकों को बड़े पद प्रदान किए। इस क्रम में उसने धीरे धीरे सामंत वर्ग की रचना को ही बदल डाला और बड़े पदों पर तुर्कों के एकाधिकार को समाप्त कर भारतीय मुसलमानों को सामंत वर्ग में प्रभावशाली प्रतिनिधित्व प्रदान किया। उसने कुछ हिंदू राजाओं की भी सेवा प्राप्त की। इस प्रकार सत्ता पर तुर्कों का अधिकार उसने वस्तुतः समाप्त कर दिया। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, परंतु जलालुद्दीन के बेटे मुल्तान में सुरक्षित थे। अलाउद्दीन ने 1296 में मुल्तान पर चढ़ाई की और जलालुद्दीन के बेटों को गिरफ्तार कर लिया, परंतु उस समय कई क्षेत्र सल्तनत के बाहर थे। गुजरात पर बघेल राजपूतों का राज्य था। राजपूताना के विभिन्न राज्य आपस में एक दूसरे से जूझ रहे थे और दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र थे। चित्तौड़ और रणथंभौर जैसे राज्यों का अस्तित्व सल्तनत की शक्ति को खुली चुनौती था। मध्य भारत में मालवा, धार, उज्जैन और बुंदेलखंड का विस्तृत प्रदेश अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। आधुनिक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सारा प्रदेश हिंदू राजाओं या स्वतंत्र मुसलमानों के हाथ में था। दोआब, अवध, वाराणसी और गोरखपुर के प्रदेशों पर भी दिल्ली का प्रभुत्व नहीं था। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में भी स्वतंत्र राज्य थे। यह वह समय था जबकि यादव, काकतीय, होयसल और पांडे के शक्तिशाली राज्यों ने किसी मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम तक नहीं सुना था। पश्चिमोत्तर सीमांत में मंगोलों के आक्रमण की संभावना बनी हुई थी और अलाउद्दीन के शासनकाल के आरंभ में ही मंगोलों के आक्रमण दिल्ली पर हुए थे। सबसे पहले मंगोल सरदार कदर ने 1297-98 में चढ़ाई की, परंतु अलाउद्दीन की सेना उन्हें पराजित कर दिया। इस विजय के पश्चात अलाउद्दीन दूसरे मंगोल आक्रमणकारी सल्दी को भी प्रभावित किया। 1299 के अंत में उसने मंगोलों के एक महत्वपूर्ण आक्रमण को विफल कर दिया, जिसका नेतृत्व कुतलुक ख्वाजा ने किया था। स्वरूप और आशय, खलजी साम्राज्यवाद का स्वरूप सिद्धांत और व्यवहार में अलग अलग था। सिद्धांत अलाउद्दीन विश्व विजय का इच्छुक था, परंतु व्यवहार में उसे केवल भारतीय उपमहाद्वीप के विजय का ही अवसर मिल सका। मुख्य रूप से अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार संबंधी अभिज्ञान तीन क्षेत्रों में केंद्रित रहे, पश्चिम भारत में गुजरात, मध्य भारत में मालवा और राजपूताना के क्षेत्र। इसके अतिरिक्त उसने दक्षिण भारत में भी अभियान किए। उत्तर और दक्षिण भारत में उसने पृथक नीतियां अपनाई। उत्तर राज्यों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणी राज्यों में उसने परोक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। तुर्क शासकों के लिए मालवा और गुजरात को उसके अधीन करने के लिए कई महत्वपूर्ण कारण थे। ये क्षेत्र न केवल घनी आबादी और उर्वर थे, बल्कि पश्चिमी तट के बंदरगाहों के व्यापार मार्ग पर उनका पूरा नियंत्रण था। गुजरात विजय का एक और महत्वपूर्ण कारण था घोड़ों के व्यापार पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण। पश्चिमी तट के बंदरगाहों के रास्ते भारत में अरब, ईरानी और तुर्की घोड़ों का बड़ी भारी मात्रा में आयात होता था। साम्राज्य विस्तार, 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलूग खां और नुसरत खां की अधीनता में एक सेना गुजरात विजय के लिए भेजी। उस समय गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा आधुनिक पाटन थी। बघेल राजा रायकरण उस पर शासन करता था। दिल्ली की सेना ने अनहिलवाड़ को घेर लिया और हस्तगत कर लिया। करण की रानी कमला देवी हमलावरों के अधिकार में आ गई, किंतु राजा करण अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पास शरण ली। गुजरात से अपार धनराशि के अतिरिक्त मलिक कपूर जैसा दास अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों का संचालक बना। गुजरात से वापसी की यात्रा में अलाउद्दीन की सेना में विद्रोह हो गया। कुछ सैनिक युद्ध में प्राप्त धन का कुछ अंश लूट कर सेना से भाग निकले और उन्होंने रणथंभौर के शासक हम्मीर देव की दरबार में शरण ली। अलाउद्दीन के द्वारा इन भगोड़ों सैनिकों की वापसी की मांग को हम्मीर देव ने अस्वीकार कर दिया अतः अलाउद्दीन ने इसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निश्चय किया। इसलिए उलूक खां और नुसरत खां को हम्मीर देव के विरुद्ध भेजा गया, परंतु उनकी सहायता के लिए अलाउद्दीन को स्वयं रणथंभौर जाना पड़ा और कई महीनों की कड़ी घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन रणथंभौर राज्य जीतने में सफल हुआ। राजपुताना में अलाउद्दीन की यह पहली सफलता 1300-1301 ईस्वी के बीच की है। इस विजय से प्रेरित होकर राजपुताना के दूसरे बड़े राज्य चित्तौड़ पर उसने आक्रमण कर दिया। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता के संबंध में चर्चा सुनकर वह उसे हासिल करने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, परंतु यह विवरण किंवदंतियों और काल्पनिक कथाओं पर आधारित है। इसके लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि पद्मिनी की कहानी वास्तविक नहीं है। चित्तौड़ का वास्तविक महत्व सामरिक था, अतः इसकी विजय को अलाउद्दीन ने आवश्यक समझा। चित्तौड़ का अभियान भी सफल रहा, यद्यपि इस बीच मंगोल नेता टारगी दिल्ली सल्तनत पर चढ़ाई कर दी। उसकी सेना दिल्ली के समीप पहुंच गई, परंतु यह अलाउद्दीन की महान सफलता थी कि उसने चित्तौड़ पर दबाव कम किए बिना मंगोल आक्रमण को भी विफल बना दिया तथा टारगी को निराश लौटना पड़ा। चित्तौड़ में अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां को शासक नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन ने अब मध्य भारत में स्थित राजपूत राज्यों की विजय की ओर ध्यान दिया। उसने 1305 ईस्वी में मालवा पर चढ़ाई की। यहाँ का शासक महलक देव था, जिसके विरुद्ध एनुल मुल्क सुल्तानी को भेज दिया गया। मालवा पर विजय आसानी से प्राप्त हुई और महलक देव ने मांडू में शरण ली। तुर्क सेना ने उसका पीछा किया और मांडू पर भी अधिकार कर लिया। यह 1305 ईस्वी में हुआ। इन दोनों क्षेत्रों के शासक के रूप में एनुल मुल्क की नियुक्ति हुई। इसके बाद उज्जैन, धरनागिरी और चंदेरी जैसे राज्यों पर भी अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया। मध्य भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण राज्य सिवाना था, जहाँ का शासक शीतल देव अत्यंत शक्तिशाली था। अलाउद्दीन ने उसके विरुद्ध स्वयं चढ़ाई की और 1308 में सिवाना को जीत लिया। शीतल देव मारा गया और कमालुद्दीन को सिवाना का शासक नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन की अगली विजय जालौर के राज्य पर हुई। यहाँ का शासक कहरदेव था। इस राज्य पर 1299 ईस्वी में गुजरात के अभियान के समय भी अलाउद्दीन ने घेरा डाला था, लेकिन इसकी विजय 1311 में ही संपन्न हुई। इसी अवधि में अलाउद्दीन ने और कई छोटे राज्यों को जीता, जिसमें बूंदी, मंदोर, टोंक, जोधपुर और मारवाड़ के नाम उल्लेखनीय है। इस तरह दिल्ली सल्तनत की सत्ता उत्तर भारत के मुख्य भाग, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में विकसित हो गई। सुदूर उत्तर में कश्मीर और पूर्व बंगाल को छोड़कर शेष उत्तर भारत के क्षेत्र अलाउद्दीन के नियंत्रण में आ गए। अलाउद्दीन की दक्षिण नीति। अलाउद्दीन ने दक्षिण को भी जीतने का संकल्प किया। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतों को पार कर दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। इस समय दक्षिण भारत में चार शक्तिशाली राज्य, देवगिरी का यादव राज जिसकी राजधानी देवगिरी थी पहला, दूसरा तेलंगाना का काकतीय राज्य जिसकी राजधानी वारंगल थी, तीसरा कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित होयसल राज्य जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, और चौथा सुदूर दक्षिण का पांड्य राज्य जिसकी राजधानी मदुरा थी। जहां राजपुताना के प्रति अलाउद्दीन ने किसी निश्चित नीति का निर्धारण नहीं किया, वहां दक्षिण के चार राज्यों से संबंधित उसकी नीति पूर्णतः स्पष्ट है। वह दक्षिण के किसी भी अंश को सल्तनत में शामिल नहीं करना चाहता था। वह अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता में। वह वार्षिक कर वसूल लेने के पश्चात दक्कन के आंतरिक शासन प्रबंध में कोई हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता था। वह केवल यह चाहता था कि दक्षिण के शासक को उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और वार्षिक कर भेजे। देवगिरी। यद्यपि अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने के पूर्व ही देवगिरी पर विजय हासिल कर ली थी, परंतु वहां के राजा रामचंद्र ने सुल्तान को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसने गुजरात के भगोड़े शासक कर्णदेव और उसकी पुत्री को भी अपने यहाँ शरण दी थी। इसलिए उसका दमन करने के लिए 1306-1307 में एक सेना सल्तनत के नायब मालिक कपूर के नेतृत्व में भेजी गई। यद्यपि देवगिरी के शासक ने वीरतापूर्वक खलजी सेना का मुकाबला किया, परंतु वह पराजित हो गया। देवल देवी, राजा कर्णदेव की पुत्री, गुजरात के गवर्नर अलप खां के हाथों में पड़ गई, जो काफूर की सहायता करने जा रहा था। देवल देवी को दिल्ली भेज दिया गया और अलाउद्दीन के सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां से उसका विवाह कर दिया गया। रामचंद्र देव भी दिल्ली ले आया गया। अलाउद्दीन ने उसे राय रायाना की उपाधि प्रदान की, उसका राज्य उसके अधिकार में रहने दिया और इसके अतिरिक्त नवसारी का जिला भी निजी जागीर के रूप में उसे दे दिया। राय रामचंद्र के साथ मित्रता अलाउद्दीन के दक्कन के अभियानों में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। इस विजय से देवगिरी की समस्या पूर्णतया हल नहीं हो सकी। रामचंद्र के पुत्र शंकरदेव ने राजा बनते ही वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। उसके साथ साथ सुल्तान की सेना ने होयसल राज्य पर आक्रमण के समय उसने सुल्तान की सहायता भी नहीं की। इसलिए अलाउद्दीन खलजी ने 1313 ईस्वी में पुनः मल्लिक कपूर को शंकरदेव को दंडित करने के उद्देश्य से देवगिरी भेजा। शंकरदेव युद्ध में करता हुआ मारा गया। सुल्तानी सेना ने गुलबर्गा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के प्रदेश डभौल और चोल बंदरगाह आदि पर कब्जा कर लिया। तेलंगाना, तेलंगाना में काकतीय वंशी राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय का शासन था। 1308 में काफूर को तेलंगाना की विजय के लिए भेजा गया। काफूर ने वारंगल को घेर कर भीतर की रक्षक सेना को भारी क्षति पहुंचाई। राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने 300 हाथी, 7000 घोड़े तथा भारी संख्या में नगद धन और रत्न युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भेंट किए और वार्षिक कर देने का वचन किया। होयसल 1310 ईस्वी में मलिक कफूर द्वारा समुद्र की विजय पर निकला। वहां का राजा वीर बल्लाल तृतीय था। काफूर की गति इतनी तीव्र थी कि वीर बल्लाल तृतीय को उसके आने की पूर्व सूचना भी ना मिल सकी और वह सहसा घिर गया। युद्ध में उसकी पराजय हुई और उसकी राजधानी पर आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। होयसल राज्य को बाध्य होकर युद्ध का भारी हर्जाना चुकाना पड़ा तथा दिल्ली सल्तनत की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी। पांड्य राज्य, द्वार समुद्र से काफूर ने पांड्य राज्य के लिए प्रस्थान किया जो दक्षिण प्रायद्वीप के अंतिम छोर पर स्थित था। सुंदर पांड्य अपने भाई से पराजित होकर दिल्ली चला गया था और अलाउद्दीन ने उसे अपना सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी। मलिक कफूर के आगमन की खबर सुनकर वीर पांड्य भाग खड़ा हुआ। काफूर ने मदुरा के नगर लूटा और रामेश्वरम एक अभियान किया। इन विजयों के उपरांत काफूर 1311 में दिल्ली लौट गया और अपने साथ अपार लूट का माल ले गया। इससे पहले दिल्ली में इतना लूटा हुआ धन कोई नहीं लाया था। इस प्रकार दक्षिण की विजय पूर्ण हो गई और लगभग समस्त दक्षिण भारत पर दिल्ली का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अलाउद्दीन की सफलता के पीछे एकमात्र निर्णायक तत्व था दक्षिणी राजाओं की पारस्परिक शत्रुता। उत्तर की राजपूत रियासतों के समान दक्षिण के देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राज्य निरंतर परस्पर युद्धों में लगे रहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे अपने शत्रुओं के विरुद्ध आपस में एक नहीं हुए और उन्होंने एक दूसरे की कोई सहायता नहीं की। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने अपने ही पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध तुर्कों की सहायता की। एक दूसरे की शक्ति पर अंकुश रखने के लिए वे अपने पड़ोसी के विरुद्ध तुर्की सेनाओं की सहायता करने में संकोच नहीं करते थे। संभवतः किसी अन्य हिंदू पड़ोसी की अधीनता स्वीकार करने की अपेक्षा वह अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने को अधिक इच्छुक थे। यही कारण है कि अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति से समझौता करने में शीघ्रता दिखाई। अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार की सर्वोच्च उपलब्धि यह भी है कि दक्षिणी प्रदेशों को साम्राज्य में विलीन किए बिना ही उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। वह उन कठिनाइयों से बच गया जिनका सामना मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण में सुल्तान की विस्तारवाद नीति के कारण करना पड़ा। अलाउद्दीन की नीति की सफलता के संबंध में डॉक्टर के एस लाल लिखते हैं, रामचंद्र देव और बल्लाल देव जैसे महान राजा दिल्ली आए। इन्होंने सुल्तान के प्रति स्वयं सम्मान प्रकट किए और इनके कोष ले लिए। साम्राज्य के गौरव में वृद्धि हुई और सल्तनत का कोष दक्कन की संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अलाउद्दीन की राज्य विस्तार नीति केवल सफलताओं की लंबी कथा है। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अलाउद्दीन की सफलताएं अल्पकालिक सिद्ध हुई। जब सुल्तान का स्वास्थ्य गिरने लगा तो उसकी शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी। फलतः विजित राज्यों को अपना सिर उठाने का मौका मिल गया। दक्षिण की विजय भी कभी पूर्ण नहीं हुई। देवंगड़ी, वारंगल, द्वार समुद्र और अन्य राज्य सिर उठाने लगे। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र एवं मावर की संपत्ति को लूट लिया गया था, मगर दक्षिण की राज्यों के साथ संधि के शर्तों द्वारा जैसे ही काफूर की विजयी सेना दक्षिण के पराजित राज्यों से कूच करती थी, दक्षिण के राज्य सल्तनत की सत्ता की अवहेलना करने लगते थे। मुबारक खलजी तथा मुहम्मद बिन तुगलक के दक्षिणी युद्धों से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन की सफलताएं दीर्घकालीन नहीं थी। अतः जब तक अलाउद्दीन शक्तिशाली रहा उसकी व्यवस्था कारगर रही, परंतु उसके मृत्युपरांत उसकी सारी व्यवस्था निष्फल हो गई। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि अपनी विस्तारवादी नीति के फलस्वरूप वह लगभग संपूर्ण भारत का स्वामी बन गया। यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मंगोलों से संघर्ष। अलाउद्दीन की सैनिक उपलब्धियों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मंगोलों के विरुद्ध संघर्ष था। आरंभिक आक्रमण के अतिरिक्त मंगोलों ने 1305 ईस्वी से 1307 ईस्वी के बीच कई आक्रमण किए। 1305-6 में अली बेग तारक और टारगी ने दिल्ली पर चढ़ाई की परंतु असफल रहे। अगले वर्ष कुबक और इकबाल मंदा ने चढ़ाई की परंतु वह भी पराजित हुए। मंगोलों के आक्रमण का बड़ी सफलता से मुकाबला किया गया। अलाउद्दीन को इस बात का श्रेय भी दिया जाएगा कि उसने मंगोल आक्रमणों के वेग को तोड़ दिया और अब दिल्ली की सेना का भय मंगोलों पर छा गया। अलाउद्दीन के शासनकाल के बाद मंगोल आक्रमणों का रूप उतना भयंकर और विनाशकारी नहीं रहा जो उसके पहले था। सैनिक सुधार। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने जो महत्वपूर्ण सैनिक सुधार भी लागू किए, ये सुधार संभवतः चित्तौड़ और रणथंभौर की विजय के पश्चात लागू किए गए थे। इन सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने एक अस्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया। सैनिकों को भूमि प्रदान करने के बदले नगद वेतन देने की प्रथा लागू की और डाग एवं हुलिया की प्रथा चलाई। इसके अंतर्गत शाही सेना के घोड़ों पर मोहर का निशान लगा दिया जाता था ताकि सैनिकों द्वारा इन्हें बदलकर मामूली घोड़े नहीं खरीद लिए जाएं। साथ ही साथ सैनिकों का हुलिया अथवा रूप विवरण लिख दिया जाता था। ताकि वे अपने स्थान पर दूसरे सैनिक को युद्ध में नहीं भेज सके। इस प्रकार अलाउद्दीन ने सेना की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार लाया, जिससे कि साम्राज्य विस्तार और मंगोलों के साथ संघर्ष में उसे सफलता प्राप्त हुई। अलाउद्दीन के राजनीतिक विचार। अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। सर्वप्रथम उसने सुल्तान के पद को अत्यंत शक्तिशाली बनाया और सामंतों के प्रभाव को नगण्य बना दिया। उसने एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था का गठन भी किया और उसकी सहायता से अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ की एवं पड़ोसी क्षेत्र को जीतकर साम्राज्यवादी विस्तार को संभव बनाया। अलाउद्दीन के विभिन्न उपलब्धियों को समझने में उसके राजनीतिक विचारों का, विशेषकर उसके राजत्व सिद्धांत को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अलाउद्दीन के पूर्व बलबन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए राजत्व संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया था। साथ ही साथ बलबन ने निरंकुशता, कुलीन तंत्र और जातीयता को बढ़ावा दिया था तथा इलवरी तुर्क पर आधारित शासन वर्ग को संगठित किया था। अलाउद्दीन के पूर्वगामी शासक जलालुद्दीन खलजी ने इलवरी सत्ता का अंत करके खलजी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में एक षड्यंत्र द्वारा जलालुद्दीन की हत्या करके सत्ता पर अधिकार कर लिया था। साथ ही साथ उसने इलवरियों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने और खलजी जाति के हाथ में सत्ता केंद्रित करने के उपाय किए। इन बदली हुई परिस्थितियों में राजत्व सिद्धांत का पुनरीक्षण करना और उसमें संशोधन करना आवश्यक था। अलाउद्दीन ने बलबन द्वारा प्रतिपादित निरंकुशता के सिद्धांत को और प्रबल बनाया। उसके अनुसार सुल्तान का पद वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो सैनिक रूप में सक्षम हो। शासक बनने का अधिकार उसे ही है जो सत्ता पर अधिकार अपने बाहुबल पर कर सके। प्रजा को सुल्तान की आज्ञा का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए और इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि सत्ता के स्रोत क्या है एवं सुल्तान ने सत्ता किस ढंग से ग्रहण की है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन ने चूंकि राजद्रोह और अग्रगामी सुल्तान की हत्या कर गद्दी पर अधिकार किया था, इसलिए इस विवाद को बनाए रहने का इच्छुक नहीं था। अतः उसने प्रजा को इस टिप्पणी के अधिकार से वंचित कर दिया। दूसरी ओर अलाउद्दीन ने सामंत वर्ग को शक्तिहीन बनाया, धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त किया और पहली बार एक नियमित अर्थ प्रणाली को लागू किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन की सत्ता के अधीन सुल्तान की निरंकुशता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और सल्तनत का कोई दूसरा शासक अलाउद्दीन जितना शक्तिशाली नहीं हो पाया। अलाउद्दीन ने धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त रखने में निर्णायक सफलता प्राप्त की। उसने एक बार कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर शरीयत के आदेशों के संबंध में काजी मुगीस से कुछ प्रश्न किए। इन प्रश्नों का संबंध चार मुद्दों से था। पहला, राज्य में हिंदुओं की स्थिति क्या होनी चाहिए। दूसरा, देवगिरी से प्राप्त धन पर अलाउद्दीन का निजी अधिकार है अथवा राज्य का। तीसरा, राजकोष का कितना सुल्तान के खर्च के लिए लिया जा सकता है। चौथा, मृत्युदंड अंगभंग की सजा देने का अधिकार सुल्तान को कहाँ तक है। इन प्रश्नों का उत्तर काजी ने दिया, परंतु अलाउद्दीन ने इसे अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के हित में निर्णय लेना आवश्यक होगा, वह निर्णय लिया जाएगा भले ही वह शरीयत के प्रतिकूल हो। अर्थात राजनीतिक निर्णयों में राज्य के हित को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि शरीयत के आदेश को। वस्तुतः यह कोई नई बात नहीं थी। भारत में मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही प्रत्येक शासक ने परिस्थिति के अनुसार शरीयत के आदेशों में संशोधन किया, परंतु अलाउद्दीन की घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण थी कि यह एक स्पष्ट नीति के रूप में प्रकट हुई और इसमें धर्म एवं राजनीति के पृथक्करण की प्रक्रिया स्पष्ट हुई। अलाउद्दीन ने शासक के कर्तव्यों में राज्य शिष्टाचार को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन का विश्वास था संसार में विभिन्न राज्य एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, अतः अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर राज्य को अपना विस्तार करना और अपने साधनों में वृद्धि करना अनिवार्य है। जो राज्य ऐसा नहीं करता वह अंत तक कमजोर और पराजित होता है। इसी सिद्धांत ने अलाउद्दीन को साम्राज्यवादी विस्तार के लिए प्रेरित किया। अतः अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत तीन मुख्य बातों पर आधारित था, शासक की निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथक्करण और साम्राज्यवाद। पहला, अलाउद्दीन ने विद्रोह संबंधी कारणों को जानने और विद्रोहों का समाधान करने की भी उपाय किए। उसके विद्रोह के चार मुख्य कारण निर्धारित किए। पहला, सुल्तान को अपने राज्य में घटित होने वाली घटनाओं की पूरी जानकारी नहीं रहती, अतः षड्यंत्र एवं विद्रोह होते रहते हैं। दूसरा, सामंत वर्ग में शक्तिशाली परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध आदि से उनकी शक्ति में वृद्धि होती है, अतः वे सुल्तान को चुनौती देने एवं विद्रोह करने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा, प्रजा के बीच एक धनी एवं उदंड वर्ग प्रस्तुत है जो बराबर सुल्तान की सत्ता को चुनौती देता है। इस वर्ग के रूप में अलाउद्दीन ने मध्यस्थ भूमिपतियों को दोषी ठहराया। चौथा, राजधानी में त्योहारों, उत्सवों, भोज के अवसर पर मदिरापान होता है, जिसमें षड्यंत्रकारियों को, अफवाह फैलाने वालों को, नशे की हालत में लोगों को बहकाने का अवसर मिल जाता है। इससे सुल्तान के विरुद्ध असंतोष की भावना जन्म लेती है। अतः अलाउद्दीन ने एक योग्य गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया ताकि उसे सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती रहे। उसने सामंतों के बीच शादी विवाह को नियंत्रित कर दिया ताकि उसकी शक्ति में वृद्धि ना हो। उसने पुरानी भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाकर मध्यस्थ भूमिपतियों को कुचल दिया एवं मद्यपान निषेध के आदेश दिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि अलाउद्दीन के उपाय सफल सिद्ध हुए और उसके राज्य में विद्रोह की समस्या का समाधान हुआ। अलाउद्दीन के राजत्व संबंधी विचार किसी सुनियोजित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए, बल्कि अलग अलग अलाउद्दीन ने जो निर्णय लिए उन्हें देखते हुए उनके राजनीतिक विचारों का इतिहासकारों ने अवलोकन किया है। ये विचार जियाउद्दीन बरनी और अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलते हैं। इस दृष्टिकोण से बलबन और अलाउद्दीन के सिद्धांत में एक मौलिक अंतर था। बलबन के सिद्धांत सुनियोजित था किंतु अलाउद्दीन का नहीं। इसके अतिरिक्त बलबन ने जहां शासक की निरंकुशता के साथ कुलीन तंत्र, जातीयता और सैन्यवाद के विचार प्रस्तुत किए, वहां अलाउद्दीन ने निरंकुशता एवं सैन्यवाद के विचार को विकसित किया किंतु जातीयता एवं कुलीन तंत्र को नहीं अपनाया। इसके विपरीत उसने धर्म एवं राजनीति में पृथककरण तथा साम्राज्यवाद के नए विचार प्रस्तुत किए। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खलजी ने अपने शासनकाल में आर्थिक जीवन के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लागू किए थे। वे थे कृषि और व्यापार। कृषि क्षेत्र में सुधारों का संबंध लगान व्यवस्था से था। लगान अथवा भू राजस्व राज्य की आमदनी का प्रमुख साधन था और अलाउद्दीन राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि करने का इच्छुक था। इसके अतिरिक्त वह मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का दमन भी करना चाहता था जो राज्य में विद्रोहों के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार अलाउद्दीन के राजस्व सुधार दो उद्देश्यों से प्रेरित थे, राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि जिससे कि साम्राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया जा सके, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का दमन और उसका धन छीनना ताकि इस वर्ग द्वारा विद्रोह एवं उपद्रव की समस्या का समाधान हो सके। प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन ने तीन महत्वपूर्ण उपाय किए। उसने दोआब, गंगा और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में लगान की दर में वृद्धि की। किसानों को उपज की 1/3 अथवा 33% के स्थान पर 1/2 अथवा 50% के रूप में लगान देने का आदेश दिए गए। इससे राज्य की आमदनी में वृद्धि हुई। दूसरी ओर अलाउद्दीन ने दुआब क्षेत्र में करमुक्त भूमि पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया और सारे भूमि अनुदान वापस ले लिए। इक्ता, इनाम, मिल्क, वक्फ आदि के रूप में सामंतों, अधिकारियों और उलेमा के पास जो भूमि थी उसे खालसा सुल्तान के अधीन प्रत्यक्ष शासन में भूमि में परिवर्तित करने के आदेश दिए गए। इस प्रकार राज्य की आमदनी में और अधिक वृद्धि संभव हुई। अलाउद्दीन ने संभवतः लगान निर्धारण की पद्धति में भी सुधार लाया। बर्नी के अनुसार उसने भूमि की माप के आधार पर लगान के निर्धारण के आदेश दिए। इस पद्धति के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु बर्नी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। उसने मात्र इतना ही लिखा है कि अलाउद्दीन ने प्रति बिस्वा में उपज के आधार पर लगान निर्धारित करने के आदेश दिए। लगान वसूली के कार्य में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवान मुस्तखरज की स्थापना की। इस विभाग द्वारा लगान वसूलने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बकाया राशि की वसूली के कठोर उपाय किए गए। मध्यस्थ भूमिपति वर्ग के दमन के लिए भी अलाउद्दीन ने कई उपाय किए। इस वर्ग के लिए बर्नी ने खूट, मुकद्दम और चौधरी शब्दों का प्रयोग किया है। ये विभिन्न श्रेणियों के भूमिपति थे जो लगान वसूली के काम में राज्य को सहयोग देते थे। इनके द्वारा किसानों से लगान वसूल कर राज्य को पहुंचाया जाता था। इस सेवा के बदले में राज्य द्वारा कुछ सुविधाएं इन्हें दी जाती थी, जैसे अपनी भूमि का ये लोग रियायती दर पर लगान देते थे और किसानों से ये राज्य के लिए लगान के अतिरिक्त अपने लिए भी कर आदि वसूल सकते थे। राज्य को दिया जाने वाला लगान सामान्य रूप से खिराज कहलाता था, जबकि भूमिपतियों द्वारा लिए जाने वाले कर हुकूक कहलाते थे। ऐसा देखा गया है कि इस वर्ग के लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे, किसानों से अधिक लगान और अपने कर वसूल कर ये धन अर्जित कर रहे थे, जबकि राज्य को लगान की राशि का पूर्ण भुगतान न करके ये लोग धनी हो गए थे। धनी होने के कारण इनके लिए अपनी निजी सेना भर्ती करना आसान था और इन सैनिकों के माध्यम से विद्रोह और उपद्रव खड़ा करते रहते थे। अलाउद्दीन ने इस वर्ग को कमजोर बनाने के लिए इसका धन छीनना आवश्यक समझा। उसने सर्वप्रथम इन भूमिपतियों को लगान वसूली के काम से मुक्त कर दिया। द्वितीय, इसने इन्हें रियायती दर पर लगान देने की सुविधा से वंचित कर दिया। तृतीय, उसने इनके सभी हुकूक अवैध घोषित कर दिए। इन उपायों से इस वर्ग की आर्थिक स्थिति पर आघात पहुंचा। बर्नी के अनुसार अब इस वर्ग के लिए घुड़सवारी करना, हथियार रखना, महंगे वस्त्र पहनना और पान खाना संभव नहीं रहा। इनके घरों की औरतें अब दूसरे के घर पर काम करने को बाध्य हुई। बर्नी के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु मध्यस्थ भूमिपतियों की स्थिति निश्चय रूप से कमजोर पड़ी और इनकी उदंडता समाप्त हो गई। अलाउद्दीन ने कृत प्रणाली में भी सुधार किया। खिराज अर्थात भूमिकर की दर में उसने वृद्धि की। खम्स अर्थात युद्ध में लूटे हुए धन में राज्य का 1/5 अंश की दर उसने बदलकर 4/5 कर दी। उसने कई नए कर लगाए, जिसमें घड़ी, मकान पर लगने वाला कर और चढ़ाई, चारागाह पर लगने वाला कर प्रमुख है। पूर्व काल में प्रचलित जजिया और जकात कर भी उसके समय में लगाए जाते रहे। इन सभी उपायों से अलाउद्दीन अपने दोनों लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा। धन अर्जित करने और राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखने में अलाउद्दीन की सफलता पूर्णतः स्पष्ट। बाजार नियंत्रण संबंधी नीति। अलाउद्दीन के सुधारों में सबसे अधिक महत्व उसकी मूल्य निर्धारण योजना अथवा बाजार नियंत्रण की नीति का है। इतिहासकारों में इस योजना के उद्देश्य, क्षेत्र एवं प्रभाव के संबंध में मतभेद हैं। इसके उद्देश्यों के संबंध में के एस लाल ने बर्नी के विचार से सहमति व्यक्त की और कहा कि यह योजना कम खर्च पर विशाल सेना को बनाए रखने के लिए लागू की गई। उनके अनुसार अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार एवं मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया। इस कार्य में राज्य को अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता, अतः अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया। 234 टंका प्रतिवर्ष वेतन और 78 टंका भत्ते के रूप में सैनिकों को दिया जाता था। अब यह अनिवार्य हो गया कि उस निर्धारित वेतन में ही सैनिकों की सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा उसमें असंतोष फैलता। बाजार नियंत्रण की योजना इसलिए लागू की गई। सक्सेना, हबीब, निजामी इस विचार से सहमत नहीं है। उसके अनुसार अलाउद्दीन ने योजना मात्र सैनिकों के लिए ही नहीं बल्कि सारी प्रजा के लिए लागू किया। उसने आम लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों को भी निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त बर्नी की एक दूसरी रचना फतवाए जहांदीरी में यह वर्णित है कि जन कल्याण के लिए मूल्य निर्धारण करना अनिवार्य है। एक अन्य रचना खैरुल मजालिस में भी अलाउद्दीन द्वारा जन कल्याण हेतु मूल्य निर्धारण की बात कही गई है। इन सब प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि अलाउद्दीन का उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह योजना मूल्य वृद्धि एवं मुद्रास्फीति को रोकने के लिए लागू की गई। इरफान हबीब के अनुसार इस योजना द्वारा अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार का लक्ष्य कम खर्च में प्राप्त करना चाहा। केएस लाल के अनुसार योजना का कार्यक्षेत्र केवल दिल्ली का नगर था। बर्नी ने किसी अन्य नगर में योजना के लागू होने का वर्णन नहीं किया है। सक्सेना आदि के अनुसार योजना केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य बड़े नगरों में भी संभवतः लागू की गई, क्योंकि सैनिकों अथवा सामान्य प्रजा केवल राजधानी में नहीं बल्कि अन्य नगरों में भी थी। UNDA ने स्पष्ट किया, चूंकि मूल्य वृद्धि की समस्या केवल दिल्ली में थी इसलिए योजना केवल दिल्ली में लागू की गई, अन्य नगरों में इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। इरफान हबीब के अनुसार यह योजना दिल्ली नगर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू थी। इस क्षेत्र की सीमा लाहौर से कड़ा तक तथा कटिहार से नागौर तक थी। योजना कार्यान्वित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग का गठन किया जिसे दीवाने रियासत का नाम दिया गया। यह वाणिज्य विभाग था तथा इसका प्रधान सदरे रियासत कहलाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक को नियुक्त किया गया। इन्हें सहना कहते थे जो योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी थे। गुप्तचर अथवा बरीद एवं मुनहिया नियुक्त किए गए ताकि बाजार की गतिविधियों एवं सहना पर निगरानी रखें। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन स्वयं भी अपने दासों और अन्य व्यक्तियों द्वारा समय समय पर बाजार से सामान मंगाकर उसकी संतुष्टि करता था। आदेशों के उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। अधिक मूल्य लेने पर कोड़े मारने की सजा थी तथा कम तोलने पर उसी अनुपात में मांस और व्यापारी के शरीर से काट लिया जाता था। इस कठोर दंड और कुशल गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन ने योजना को पूरी कड़ाई से लागू किया। समकालीन इतिहासकार बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने अग्रलिखित बाजार स्थापित किए। पहला मंडी, जहां अनाज का व्यापार होता था। दूसरा सराय अदल, जहां वस्त्र का व्यापार होता था। तीसरा दास, घोड़ों एवं मवेशियों और अन्य वस्तुओं के लिए सामान्य बाजार। उसने विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारित कर दिए। गेहूं 7.15 जीटल प्रतिमन, चावल 5 जीटल प्रतिमन, जौ 4 जीटल प्रतिमन, चना 5 जीटल प्रतिमन आदि मूल्य निर्धारित हुए। कपड़े में रेशमी वस्त्र 16 टंका से लेकर 2 टंका के बीच बिकते थे, जबकि सूती कपड़े 36 जीटल से 6 जीटल के बीच बिकते थे। उत्तम श्रेणी के घोड़े 100 से 120 टंका एवं मामूली तत्तू 10 से 25 टंका में बिकते थे। दासों का मूल्य 5 से 40 टंका के बीच था। मंडी में अनाज की आपूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने लगान की वसूली अनाज के रूप में करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त इसने किसानों से निजी आवश्यकता से अधिक अनाज निर्धारित मूल्य पर खरीदने का आदेश दिया। इन उपायों से राज्य को अनाज निर्धारित मूल्य पर खरीदने को मिल गया और यह मंडी तक पहुंचाया गया। मंडी में यह अनाज लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा बेचने का आदेश दिया गया। व्यापारियों को निर्धारित मूल्य पर ही अनाज बेचना था। आपातकालीन परिस्थितियों में व्यापारियों को निर्धारित मात्रा में ही अनाज प्रतिदिन बेचने का आदेश था। यह अनाज राज्य के अतिरिक्त भंडार से उपलब्ध कराया जाता था। इन उपायों से अलाउद्दीन ने सभी परिस्थितियों में अनाज का व्यापार नियंत्रित मूल्य पर ही होने दिया, जो कि एक निश्चित रूप से असाधारण सफलता थी। वस्त्र बाजार में विदेशों से आयात किए गए रेशमी कपड़ों का मूल्य निर्धारित करना कठिन था, अतः अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को राज्य द्वारा ऋण प्रदान किया ताकि वे व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदे और बाजार में लाकर निर्धारित मूल्य पर बेचे। इस व्यापार में जो हानि होती थी वह राज्य द्वारा पूरी की जाती थी तथा व्यापारियों को उनकी सेवा के बदले में कमीशन प्रदान किया जाता था। महंगे वस्त्र केवल विशेष परमिट के आधार पर ही खरीदे जा सकते थे। दासों, घोड़ों और मवेशियों के बाजार में मूल्य वृद्धि की समस्या दलालों द्वारा उत्पन्न की जाती थी, जो व्यापारी एवं ग्राहक दोनों से कमीशन वसूलते थे। अतः अलाउद्दीन ने इन दलालों को बाजारों से निष्कासित कर दिया एवं राज्य द्वारा व्यापारियों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए। हर व्यापारी को अपना सामान सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षित करवाना पड़ता था। इस आधार पर उनकी श्रेणियां निर्धारित की जाती थी। प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित मूल्यों के अनुसार ही उन्हें अपना सामान बेचना पड़ता था। राज्य एवं प्रजा पर प्रभाव। अलाउद्दीन ने इन उपायों से सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया एवं उसने अपने शासनकाल में पूरी अवधि में उसने किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होने दी। यह एक प्रशंसनीय सफलता थी, किंतु प्रश्न यह उठता है कि ये उपाय क्या सभी वर्गों के लिए लाभदायक एवं हितकारी सिद्ध हुए? केएस लाल के अनुसार अलाउद्दीन का उद्देश्य केवल सैनिक और सामंत वर्ग को ही संतुष्ट रखना था, ताकि इनके समर्थन से वह अपनी निरंकुश सत्ता को मजबूत बना सके। उसने अन्य सभी वर्गों के शोषण परिव्यवस्था को विकसित किया और किसान, शिल्पकार एवं व्यापारी इससे असंतुष्ट थे। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अलाउद्दीन के इन उपायों का उद्देश्य केवल दिल्ली की प्रजा को संतुष्ट रखना था, ताकि वे उसके निरंकुश शासक के विरुद्ध आवाज न उठाए। इसके लिए उसने सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रजा का शोषण किया। सक्सेना आदि ने इन विचारों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि स्वयं बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने से पूर्व उनके उत्पादन पर हुई लागत को ध्यान में रखा, अर्थात मूल्य निर्धारण मनमाने ढंग से नहीं हुआ। बर्नी के ही शब्दों में, अलाउद्दीन ने मुनाफाखोरों को समाप्त करने का प्रयास किया, साधारण व्यापार को अस्त व्यस्त करने का नहीं। यह भी स्मरणीय है कि अलाउद्दीन ने सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया। यदि किसानों को निर्धारित मूल्य पर अनाज बेचना था तो उन्हें निर्धारित मूल्य पर ही वस्त्र एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। इसलिए किसानों एवं शिल्पकारों पर योजना का बुरा प्रभाव पड़ना तर्कसंगत नहीं लगता। व्यापारी वर्ग निश्चित रूप से योजना से अप्रसन्न था, परंतु इरफान हबीब ने बर्नी के वर्णन के आधार पर स्पष्ट किया है योजना का लाभ वास्तव में केवल सामंत और सैनिक वर्ग को ही प्राप्त हुआ। सामान्य जनता को इसका लाभ इसलिए नहीं हुआ कि मूल्य में कमी के साथ साथ मजदूरी की दर भी घटी। अतः केवल उसी वर्ग को वास्तविक लाभ हुआ जिसकी क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, जो वेतन पाता था, जैसे सैनिक या सामंत जिसके पास संचित धन था। अलाउद्दीन के जीवन काल में तो व्यापारी इस योजना का विरोध करने का साहस नहीं कर सके, किंतु उसके मृत्यु के बाद व्यापारियों ने योजना का विरोध आरंभ किया और मुबारक खलजी जैसे अयोग्य शासक के लिए योजना को जारी रखना असंभव हो गया, अतः योजना स्थगित हो गई। किंतु केएस लाल के अनुसार मुबारक खलजी ने योजना इसलिए स्थगित कर दी कि अब पहले की तरह सैनिक खर्च की आवश्यकता नहीं रही थी। इरफान हबीब के अनुसार योजना स्थगित करने का कारण यह था कि उसकी उपयोगिता सीमित समय के लिए ही थी। मूल्यों में कमी से आगे चलकर राज्य को भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि मूल्यों में कमी से राज्य की आय का वास्तविक मूल्य भी कम हो रहा था। अतः अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी ने इसे स्थगित कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल्य निर्धारण की योजना अलाउद्दीन खलजी की एक विशिष्ट उपलब्धि थी, जो उसकी असाधारण प्रतिभा का व्यापक प्रभाव प्रस्तुत करती है। इस योजना के लिए उसकी प्रशंसा समकालीन, मुगलकालीन और आधुनिक इतिहासकारों ने भी की है। दुर्भाग्यवश यह सारी उपलब्धि एक व्यक्ति की प्रतिभा पर आधारित थी और उस व्यक्ति के अर्थात अलाउद्दीन के मृत्यु के पश्चात इस योजना का कार्यान्वयन कारगर रूप से संभव नहीं हो पाया। मुबारक खलजी। अलाउद्दीन खलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने सत्ता पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा। उसने अलाउद्दीन के नवजात शिशु शहाबुद्दीन को शासक बना दिया और स्वयं संरक्षक बनकर सत्ता पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसके विरोधियों ने जल्दी ही उसकी हत्या कर दी और मुबारक खलजी को शासक बना दिया। उसने उदारता की नीति अपनाई, अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए बंदियों को मुक्त कर दिया, दंड विधान की कठोरता को कम किया, लोगों की छीनी हुई भूमि लौटाई, सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया, उलेमा आदि को आर्थिक अनुदान दिया, लेकिन जल्दी ही वह भोग विलास के जीवन में व्यस्त हो गया, जिससे आगे चलकर उसकी सत्ता का अंत हुआ। अपने संक्षिप्त शासनकाल में मुबारक ने दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस क्षेत्र में बराबर विद्रोह हो रहे थे और दिल्ली से इन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्रभावशाली नहीं रहा था। अतः 1318 ईस्वी में मुबारक ने इस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव पर भी चढ़ाई की। उसके ही आदेश पर खुसरो खान ने भी माबर अर्थात मदुरा पर चढ़ाई की। मुबारक के शासन में खुसरो खां के प्रभाव एवं शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि वह सुल्तान का विश्वास पात्र था। उसने अपनी शक्ति का लाभ उठाकर मुबारक की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया। शासक के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने लगा। उसने अपने सहजातीय बहादुर सैनिकों का सक्रिय समर्थन प्राप्त किया और अनेक प्रांतीय शासक भी उसके विश्वास पात्र हो गए, परंतु सीमांत क्षेत्र के शक्तिशाली रक्षक गाजी तुगलक ने उसका विरोध किया और अन्य प्रांतीय अधिकारियों से इस कार्य में सहयोग मांगा। उसके द्वारा खुसरू शाह पर इस्लाम विरोधी आचरण, सुल्तान अलाउद्दीन के वंश के प्रति विश्वासघात और अन्य अपराधों का दोष आरोपित किया गया। समुचित सैनिक तैयारियों के बाद गाजी तुगलक ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और खुसरू खां को पराजित कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। तुर्क सामंतों के वर्ग ने भी खुसरू का विरोध किया, क्योंकि खुसरू भारतीय मुसलमान था और तुर्क सामंत इस वर्ग को हीन समझते थे। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 25। सिंहासन पर अधिकार करने के पश्चात गाजी तुगलक ने गियासुद्दीन तुगलक शाह की पदवी धारण की। अगले 5 वर्षों तक उसने दिल्ली पर शासन किया। उसके समक्ष कई समस्याएं थीं। सिंहासन पर उसका कोई प्रत्यक्ष दावा नहीं था और न ही उसके सत्तारूढ़ होने का विरोध हो सकता था। प्रांतों में विरोध हो रहे थे। बंगाल तो बलबन की मृत्यु के बाद ही स्वतंत्र हो गया था। सिंध का नाम मात्र नियंत्रण में नाम मात्र था। गुजरात में भी उपद्रव हो रहे थे। राजपूतों द्वारा भी अपनी शक्ति का विस्तार किया जा रहा था, जबकि दक्षिण में भी अशांति और उपद्रव का वातावरण था। खुसरू शाह द्वारा राजकोष का धन अपने समर्थकों और सामंतों के बीच बांटने से भी वित्तीय संकट भी उत्पन्न हो गया था। गियासुद्दीन ने इन सभी समस्याओं का समुचित समाधान करने के उपाय किए। सर्वप्रथम उसने अपने सत्तारूढ़ होने की औपचारिक पुष्टि सामंतों से प्राप्त की। इससे उसकी सत्ता को वैधानिक आधार प्राप्त हुआ। उसके राज्यारोहण का स्वागत सामान्यतः उलेमा वर्ग ने भी किया। इससे सामंतों के विरोध की संभावना पर नियंत्रण प्राप्त हुआ और गियासुद्दीन की सत्ता को वैधानिक स्वीकृति भी मिली, जिससे उसकी सत्ता सुदृढ़ हुई। परंतु इससे सामंतों और उलेमा जैसे शक्तिशाली वर्गों के राजनीतिक प्रभाव में भी वृद्धि हुई और निरंकुश राजतंत्र की परंपरा कमजोर पड़ी। विद्रोह की समस्या पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए गियासुद्दीन ने सक्रिय उपाय किए। एक सफल सेनानायक होने के नाते उससे प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही की उपेक्षा भी की जा सकती थी। 1321 में उसने अपने पुत्र जौना खां को तेलंगाना के विद्रोही शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान के लिए दक्षिण भेजा। कुछ कारणों से जौना खां को आशातीत सफलता नहीं मिली, अतः 1322 में दूसरा अभियान हुआ। वारंगल पर तुर्कों का अधिकार हो गया और इसे कई प्रशासनिक क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। 1324 में 2 महत्वपूर्ण अभियान संपन्न हुए। सुल्तान ने स्वयं बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीतकर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। वापसी के समय उसने उत्तर बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया और मिथिला के कर्णाट शासक को पराजित करते हुए तिरहुत के क्षेत्र को हस्तगत कर लिया। यह पहला अवसर था जब तुर्कों की सत्ता उत्तरी बिहार तक विस्तृत हुई। दूसरी ओर जौना खां ने जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय पर आक्रमण किया। जाजनगर का राज्य पूर्वी सागर तट पर आधुनिक उड़ीसा के क्षेत्र में स्थित था। यहाँ के शासक ने प्रताप रुद्रदेव को सहायता प्रदान की थी और जौना खां ने उसे दंड देने के लिए उसके राज्य पर चढ़ाई की। इतिहासकार इसामी के अनुसार इन सफलताओं पर सुल्तान ने राजकुमार जौना खां को सम्मानित भी किया। सक्रिय सैनिक कार्यवाही से राज्य में शांति की पुनर्स्थापना और केंद्रीय सत्ता की सुदृढ़ता में योगदान किया। गियासुद्दीन ने वित्तीय संकट पर भी ध्यान दिया और आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार लागू किए। खुसरू शाह द्वारा वितरित राजकोष की धन की पुनः प्राप्ति के भी उपाय किए गए। अधिकतर लोगों ने इसे धन लौटा दिया, परंतु इस सिलसिले में सुल्तान का मनमुटाव दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ हो गया। सुल्तान ने लगान व्यवस्था में भी सुधार किया। अलाउद्दीन के शासनकाल की कठोरता के विपरीत उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मे मियाना अथवा मध्यपंथी नीति कहा। मध्यस्थ भूमिपतियों के पुराने अधिकार उन्हें लौटा दिए गए और लगान की मात्रा में भी परिवर्तन किया गया, जिससे किसानों को भी राहत मिली। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसने परंपरागत रूप से निर्धारित उपज के 1/5 भाग पर अतिरिक्त कर के रूप में 1/10 अंश को लगान की मात्रा को निर्धारित किया। इरफान हबीब के अनुसार उसने मध्यस्थ भूमिपतियों को किसान से के लगान के अतिरिक्त सभी दूसरे कर वसूलने से रोक दिया। उसने अमीरों अथवा इक्तादारों द्वारा लगान वसूली में ठेकेदारी की कुरीति पर रोक लगाई और सरकारी अधिकारियों को लगान वसूली के लिए नियुक्त किया। उनके द्वारा लगान वसूली में प्राप्त आमदनी का लेखा जोखा नियमित रूप से लिया जाने लगा। फवाजिल या अतिरिक्त आमदनी को इक्तादारों द्वारा केंद्रीय कोष में जमा करने के उपाय किए गए। सुल्तान ने सैन्य संगठन की कार्यकुशलता को भी बनाए रखा और डाग एवं चेहरा की पद्धति को प्रभावशाली ढंग से लागू किया। गियासुद्दीन के सुधारों की प्रशंसा बर्नी ने की है। उसके अनुसार इन सुधारों से लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे अलाउद्दीन का युग वापस आ गया है। 1325 में बंगाल अभियान में वापसी पर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दिल्ली नगर से कुछ दूर अफगानपुर नामक गांव में हो गई। मृत्यु एक दुर्घटना में हुई जब सुल्तान के सम्मान में आयोजित समारोह के दौरान मंडप का एक भाग ध्वस्त हो गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह दुर्घटना वास्तव में सोचे समझे षड्यंत्र का परिणाम थी। इसके लिए राजकुमार जौना खां उत्तरदायी था, परंतु इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वस्तुतः आरोप निराधार ही है।
मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु पर उसका बड़ा पुत्र जैना खां, जिसे उलुग खां की उपाधि भी प्राप्त थी, सिंहासन का अधिकारी हुआ। उसने मोहम्मद बिन तुगलक शाह की पदवी धारण की। उसका शासनकाल 1325 से 1351 सल्तनत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में उसने मौलिक और अनोखे विचार एवं सिद्धांत अपनाए और उन्हें क्रियान्वित करने के उपाय किए। उसने विस्तारवादी नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया और उत्तर एवं दक्षिण भारत को एकता के सूत्र में बांधा। उसके राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में देवगिरी और वारंगल तक तथा पश्चिम में सिंध एवं गुजरात से पूर्व में बंगाल तक विस्तृत थी। उसने पश्चिमोत्तर में कालानूर एवं फरशूर, जिसे पेशावर कहा जाता है, को जीता और दक्षिण में द्वार समुद्र, माबर और अणेगुंडी के राज्यों पर अधिकार कर लिया, जिसे पश्चिमी सागर तट पर उसका अधिकार हो गया। उसका साम्राज्य 23 विशाल प्रांतों पर आधारित था, जिनमें कश्मीर, बलूचिस्तान और पूर्वांचल के क्षेत्रों के अतिरिक्त लगभग सारा उपमहाद्वीप सम्मिलित था। दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक की नीति पूर्वगामी शासकों से भिन्न थी। चूंकि शासक बनने के पूर्व भी वह दक्षिण में सक्रिय रहा था, इसलिए इस क्षेत्र के प्रति उसे गहरी अभिरुचि थी। इसके अतिरिक्त बंगाल विजय के पश्चात अब दक्षिण ही एक ऐसा क्षेत्र रह गया जहां साम्राज्य विस्तार की संभावनाएं प्रस्तुत थीं। अतः सुल्तान ने दक्षिण और उत्तर भारत के विलय के उपाय किए, परंतु उनकी सफलता क्षणिक सिद्ध हुई। जल्द ही राज्य में नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, दक्षिण के क्षेत्र साम्राज्य से पृथक हो गए और पूर्व में बंगाल का राज्य भी स्वतंत्र हो गया। अन्य प्रांतों में भी अलगाववादी और विघटनकारी शक्तियां प्रबल होने लगीं। कई स्थानों पर विद्रोह हुए। साम्राज्य के मध्य में भी महत्वाकांक्षी सरदारों ने विद्रोह किए। सुल्तान की नीतियों से असंतुष्ट सामंत भी विद्रोही हो गए। इन सभी घटनाओं ने साम्राज्य की अखंडता को कमजोर कर दिया। अतः सल्तनत के विस्तार का चरमोत्कर्ष उसके विघटन का आरंभिक बिंदु भी सिद्ध हुआ। 1328 से 1333 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध कई विद्रोह हुए। मध्य भारत में बहाउद्दीन गुशप मुल्तान से बहराम एबा, बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर और सिंध क्षेत्र में कमालपुर का विद्रोह इनमें प्रमुख है, परंतु यह सब कुचल दिए गए। इसके बाद दक्षिण में 1334 में माबर के राज्य में विद्रोह हुआ, जो सफल रहा और यह क्षेत्र सल्तनत से अलग हो गया। इसका लाभ उठाकर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने भी कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में एक स्वतंत्र राज्य संगठित कर लिया, जो आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। इसी समय में वारंगल राज्य में भी कान्हा नायक ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली। दक्षिण भारत में कंपिली का प्रांत भी स्वतंत्र हो गया। पूर्वी भारत में 1338 में बंगाल का राज्य भी सल्तनत से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में प्रकट हुआ। सुल्तान की नीतियों से असंतुष्ट कई अधिकारियों ने भी 1338 से 1341 के बीच विद्रोह किए, जैसे कड़ा में निज़ाम, बीदर में शहाब सुल्तान, गुलबर्गा में अली शाह आदि। इसके अतिरिक्त एनुलमुल्क और शाह अफगान के विद्रोह भी हुए। सुल्तान ने इन विद्रोहों का दमन किया और गुजरात के सरदारों के विरोध को भी कुचल दिया। लेकिन 1346 से 1347 में दक्षिण भारत से सदा अमीरों के वर्ग ने विद्रोह खड़ा कर दिया और स्वतंत्र बहमनी राज्य का गठन कर लिया। अंतिम विद्रोह तगी द्वारा गुजरात में किया गया। सुल्तान ने उसे पराजित करके सिंध की ओर भागने पर बाध्य किया। उसी का पीछा करते हुए थट्टा के समीप 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। तब तक साम्राज्य के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके थे और पश्चिम में गुजरात और सिंध भी विद्रोह से प्रभावित थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के अनेक क्षेत्र स्वतंत्र हो गए, लेकिन अभी भी सल्तनत की सीमा उतनी ही विस्तृत थी जितनी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के समय थी। इससे एक ओर यह स्पष्ट हो जाता है कि अलाउद्दीन ने अपने राज्य के प्रत्यक्ष शासन की जो सीमा निर्धारित की थी वह तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त थी और उन्हें विस्तृत करके उसके उत्तराधिकारी ने राजनीतिक भूल की। दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रबंध अभी भी सुव्यवस्थित और कार्यकुशल थे, जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के अभाव से उत्पन्न राजनीतिक समस्या की स्थिति में भी साम्राज्य की अखंडता बनी रही। प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी और इससे साम्राज्य की विघटन की समस्या फिरोज शाह के शासनकाल के समय में उत्पन्न हुई। व्यक्ति एवं विचार। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक नवीन विचारों एवं प्रयोगों का समर्थक था। राजनीतिक संकटों एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उसने समस्त भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण का प्रयास किया। यह कार्य अशोक के पश्चात किसी दूसरे शासक ने नहीं किया। उसने सल्तनत के इतिहास में पहली बार व्यापक साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। लगभग समस्त भारत को जीतने के बाद उसने भारत से बाहर मध्य एशिया में भी साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया और अन्य शासकों के साथ कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए। उसके समय में चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज्म आदि के साथ राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। जिससे सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों से आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क में भी वृद्धि हुई। राज्य की नीतियों का नवनिर्धारण। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान होने के साथ साथ तार्किक व्यक्ति भी था। उसे शरीयत अथवा इस्लाम के धार्मिक कानून का भी ज्ञान था। उलेमा के विपरीत वह उदार दृष्टिकोण का समर्थक था और सूफियों के विपरीत वह संसार से विरक्त न होकर सक्रिय जीवन बिताने में विश्वास रखता था। यद्यपि इसे इस्लाम में पूरी आस्था थी, लेकिन वह अन्य धर्मों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। जैन आचार्यों राजशेखर तथा जिन प्रभासूरी के साथ उसके वाद विवाद और उन्हें धन आदि भेंट करने के प्रमाण मिलते हैं। होली और अन्य हिंदू त्योहारों में उसके भाग लेने का वर्णन इसामी ने किया है। इन बातों से उसकी धार्मिक उदारता का प्रमाण मिलता है। उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति मध्यकालीन सुल्तानों के बीच उसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। उसने जैन मंदिरों के निर्माण आदि की न केवल अनुमति दी, बल्कि उसने व्यक्तिगत अनुदान भी दिया। परंतु धर्मांध उलेमा उसकी इस नीति से संतुष्ट नहीं थे और तर्क को प्रधानता देने के कारण वे उसे विधर्मी समझते थे। अतः उलेमा वर्ग ने उसका विरोध बड़े पैमाने पर किया। सुल्तान जाति और जन्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव में विश्वास नहीं रखता था, बल्कि योग्यता के अनुसार पद और सम्मान देना चाहता था। उसने अपने सामंतों में निम्न वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जो इन पदों के लिए योग्य था। उसका यह प्रयास न सिर्फ कुलीन सामंतों के लिए असहाय था जो अपने विशेषाधिकार और सुविधाओं की रक्षा के लिए तत्पर थे, बल्कि उन सभी लोगों के लिए अप्रिय थे जो निम्न वर्गों के उद्धार से संतुष्ट नहीं थे। यही नहीं, सुल्तान ने जैनों एवं हिंदुओं को भी बड़े पद प्रदान किए। ये सब बातें तत्कालीन परंपराओं के विरुद्ध थीं और बर्नी तथा अन्य इतिहासकार इनके महत्व और उपयोग को समझने में असमर्थ थे। इसलिए सुल्तान के व्यक्तित्व के संबंध में उन्होंने निराधार आलोचना की। प्रशासनिक योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विवादास्पद विषय उसकी प्रशासनिक योजनाओं के रूप में देखा जा सकता है। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला, दुआब में कर की वृद्धि। दूसरा, देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। चौथा, खुरासान पर आक्रमण करना। पाँचवा, कराची की ओर अभियान। परंतु इस वर्णन में उसने तिथि क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में देवगिरी के नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। यद्यपि यह प्रयास अल्पकालीन सिद्ध हुआ, बर्नी लिखता है कि देवगिरी सल्तनत के मध्य में पड़ती थी, इसलिए वहां से संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना आसान था। इसामी लिखता है कि सुल्तान खूनी एवं रक्त पिपासु था। वह दिल्लीवासियों को सजा देना चाहता था क्योंकि लोग उसके महल में चुपके चोरी से भद्दी गालियों से भरे पत्र फेंक आया करते थे। लेकिन सभी इतिहासकार इसे सहमत नहीं हैं। मेहंदी हुसैन ने सिद्ध किया है कि सुल्तान का उद्देश्य दिल्ली के साथ साथ दक्षिण में एक द्वितीय राजधानी का निर्माण करना था। उसने दक्षिण में प्रभावी प्रशासन के लिए देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहा। इसके अग्रलिखित प्रमाण हैं। पहला, मसालिकुल अवसार के लेखक का कथन है कि दिल्ली सल्तनत को की 2 राजधानियां हैं, एक दिल्ली और दूसरी देवगिरी या दौलताबाद। दूसरा, दिल्ली से दरबार सिक्के ढाले जाने के प्रमाण मिले हैं क्योंकि 1327, 1328, 1329 ईस्वी की दिल्ली टकसाल के सिक्के उपलब्ध हैं। देवगिरी के महत्व को बढ़ाने के लिए उसने निश्चय किया कि वहां पर राजवंश के लोग, बड़े बड़े अमीर, विद्वान, संत, महात्मा आदि बसा दिए जाएं। इन लोगों के वहां बसने के एवं मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने पर ही दक्षिण पर अधिकार बनाए रखने में सुविधा होती। इसलिए दरबार के अमीरों, विद्वानों आदि को वहां भेजा गया। लेकिन दौलताबाद की तत्कालीन परिस्थितियों ने उसे फिर दिल्ली लौट जाने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार दक्षिण पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयास असफल रहा। सुल्तान को इस कार्य के लिए बहुत बदनामी मिली और प्रजा में इस कारण काफी असंतोष फैला। तात्कालिक रूप से इस योजना का कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इसके दीर्घकालीन प्रभाव महत्वपूर्ण थे क्योंकि यही वह पहला शासक था जिसने पूरे देश के एकीकरण का प्रयास किया। सांस्कृतिक एकीकरण इसी योजना का परिणाम थी। यही कार्य आगे चलकर सम्राट अकबर ने किया, जिसके लिए उसको महान कहा जाता है। आर्थिक सुधार। सुल्तान का दूसरा प्रयोग राजस्व व्यवस्था में सुधार से संबंध था। प्रशासनिक एकीकरण की नीति का पालन करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण साम्राज्य में समान राजस्व व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। उसने इस उद्देश्य कई अध्यादेश जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब क्षेत्र में भूमि कर में वृद्धि कर दी और उपज का 50% लगान के रूप में निर्धारित किया। यह दर बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि अलाउद्दीन ने भी दुआब में लगान की दर 50% रखी थी। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कमी कर दी, किंतु जिस समय वह लगान बढ़ाया गया उस समय दुआब में अकाल पड़ रहा था। लगान अधिकारियों ने निर्दयता के साथ कर वसूल किया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानों पर विद्रोह भड़क उठे। मेहंदी हुसैन के अनुसार सुल्तान की सेना से निकाले गए सैनिकों ने खेती करना आरंभ कर दिया था, और जब कर बढ़ाया गया तो उन्होंने कर देने के स्थान पर खेती करना बंद कर दिया तथा लगान अधिकारियों को मार्ग भगाया। बाद में सुल्तान ने किसानों को बीज, बैल आदि दिए तथा सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए, परंतु इसे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि ये सहायता कार्य काफ़ी देर से किए गए थे। मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के उद्देश्य दीवान एक कोही की स्थापना की। इसका उद्देश्य था राज्य की ओर से सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। एक आदर्श कृषि फार्म की व्यवस्था की गई। दुर्भाग्यवश सुल्तान की यह योजना असफल रही। सुल्तान ने दोआब के एक बंजर स्थान को एक आदर्श फार्म के रूप में चुना था, पुनः सुल्तान ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों की को इस योजना के लिए धनराशि दी गई थी, उसका दुरुपयोग किया गया एवं गबन हुआ। असफलता का एक और कारण कम समय में लाभ की आशा करना भी था, क्योंकि ऐसी योजनाओं की सफलता के लिए 2-3 वर्ष की अवधि कम होती है। सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में मुद्रा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार लाए। संभवतम इल्तुतमिश के पश्चात किसी दूसरे शासक द्वारा इतने महत्वपूर्ण सुधार नहीं किए गए थे। इन सभी सुधारों में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अत्यंत महत्वपूर्ण था। सांकेतिक मुद्रा अन्य समकालीन शासकों ने भी जारी की थी, जैसे ईरान और चीन के शासक। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने नए प्रयोग करने की इच्छा से प्रेरित होकर और राजकोष की दयनीय अवस्था के कारण चांदी के टंकों के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ये सिक्के कांसे के बने थे। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण इस धातु का मूल्य निरंतर बढ़ रहा था, जिसके कारण मुद्रा प्रणाली में असंतुलन की भावना थी। इसलिए चांदी के भंडार को सुरक्षित रखने और उसके स्थान पर सांकेतिक मुद्रा जारी करने के आदेश सुल्तान द्वारा दिए गए। लेकिन इस योजना का अंत भी असफलता में हुआ, क्योंकि बाजार में जाली सिक्के काफी अधिक प्रचलित हो गए थे। बेईमान लोगों ने नाजायज फायदे के लिए सिक्कों की नकल आरंभ कर दी और स्थिति गंभीर हो गई। लोगों ने चांदी के सिक्के जमा करने शुरू कर दिए और प्रतीक मुद्रा में ही भुगतान पर जोर दिया, परंतु जाली सिक्कों के कारण प्रतीक मुद्रा में लोगों का विश्वास ही नहीं रहा। विदेशी यात्रियों ने इन सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया और अंततः मोहम्मद बिन तुगलक को यह योजना वापस लेनी पड़ी। उसने प्रतीक मुद्रा के बदले चांदी का भुगतान भी कर दिया ताकि जनता को हानि ना हो, मगर राजकोष को इससे क्षति पहुंची। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात के लिए दोषी ठहराया है कि उसने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के समय इस बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया कि सिक्कों की नकल करना आम व्यक्तियों के लिए कठिन हो जाए, और यही उसकी असफलता का मुख्य कारण बना। मोहम्मद हबीब ने स्पष्ट किया है कि सुल्तान ने विशेष प्रकार के कांसे का प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के लिए किया था, जिसकी पहचान कसौटी पर हो सकती थी। यही कारण है कि योजना स्थगित करने के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने जाली सिक्कों पर भुगतान नहीं किया, परंतु आम प्रजा ने सिक्कों के लेन देन में आवश्यक सावधानी नहीं बरती, इसलिए योजना असफल हो गई। सैनिक अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ सैनिक योजनाएं भी बनाई। उसने खुरासान और कराचील की विजय की भी योजना बनाई। खुरासान अभियान के लिए उसने 370,000 सैनिक भर्ती किए। सैनिकों की भर्ती करने में अपार धनराशि खर्च हुई। यह आशा की गई थी कि अगले वर्ष युद्ध में धन प्राप्त होने से इस खर्च को पूरा कर लिया जाएगा, परंतु कुछ कारणों से यह अभियान पूरा नहीं हो सका और खर्च कम करने के लिए सेना भंग कर दी गई। इससे विद्रोह और अशांति फैली। बर्नी ने इस योजना को अव्यवहारिक बताया है और सुल्तान को दोषी ठहराया है, परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने इस योजना के मूल में मोहम्मद बिन तुगलक की इस इच्छा को व्यक्त किया है कि वह मध्य एशिया में उत्पन्न राजनीतिक शून्य का लाभ उठाना चाहता था। इसके अतिरिक्त यह अनुमान भी लगाया जाता है कि खुरासान के व्यापारिक महत्व को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक उसे जीतने का इच्छुक था। कराचील अभियान का लक्ष्य सीमित था और सुल्तान सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना प्रभाव सुदृढ़ करना चाहता था। कराचील का यह क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था, परंतु कराचील का अभियान भी विफल सिद्ध हुआ। असफलता के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। सभी इतिहासकार शासक के रूप में उसकी असफलता को स्वीकार करते हैं। विवाद इस बात को लेकर है कि सुल्तान की असफलता उसके तथाकथित पागलपन एवं व्यक्तिगत दोषों का परिणाम थी, अथवा इस असफलता के मूल में प्रतिकूल परिस्थितियों का दोष था। मोहम्मद बिन तुगलक एक सजग एवं सचेत शासक था। उसने राज्य प्रशासन एवं धर्म के क्षेत्र में भी वांछनीय सुधार लाया, न्याय व्यवस्था को सुसंगठित किया, दंड विधान कड़ा किया और न्याय में समरूपता लाने की कोशिश की। न्याय निष्पक्ष और शीघ्र होने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरों के प्रति कठोर नियंत्रण की नीति का पालन किया। उसने प्रशासन में योग्यता को आधार बनाकर बहाली शुरू कर दी। इसे सुल्तान, तुर्क सामंत एवं बर्नी जैसे इतिहासकारों की आलोचना का पात्र बन गया। धर्म के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने सामान्यतः उदारता एवं सहिष्णुता की नीति अपनाई। उलेमा वर्ग के प्रभुत्व में कटौती की गई, अतः कट्टर मुसलमान और रूढ़िवादी उलेमा तुर्क अमीरों के साथ साथ सुल्तान के घोर शत्रु बन बैठे। उसके समय में साम्राज्य विस्तार चरम सीमा पर था। उस समय की परिस्थितियों में उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। उसे बराबर आंतरिक विद्रोह में उलझना पड़ा। प्राकृतिक प्रकोप भी उसकी असफलता के लिए महत्वपूर्ण कारण थे। अकाल और महामारी की समस्याएं लगातार बनी रहीं। सरकारी कर्मचारियों ने बिल्कुल असहयोग किया। वे बेईमान और लालची थे। उनको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। सुल्तान की कल्याणकारी योजनाओं से उनको कुछ लेना देना नहीं था। जैसा कि विदित है कि किसी भी योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक कर्मचारी ही जिम्मेदार होते हैं और यही लोग बेईमान और भ्रष्ट हैं, इसलिए उसकी योजनाएं असफल सिद्ध हुई। शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन केवल उसकी नीतियों की असफलता के संदर्भ में ही करना न्यायोचित नहीं होगा। हमें यह भी देखना होगा कि उसके समक्ष जो आदर्श थे वे कितने महत्वपूर्ण थे। यह सही है कि उन आदर्शों की प्राप्ति सुल्तान के लिए संभव नहीं हुई, परंतु उसने जो कुछ प्राप्त करना चाहा वह अत्यंत प्रशंसनीय था और उसके लिए सुल्तान हमारी श्रद्धा और सम्मान का अधिकारी है। 1351 में तगी के विद्रोह के दमन के क्रम में सुल्तान जब सिंध में सक्रिय था तो चट्टा के समीप वह रोगग्रस्त हो गया, फलतः उसकी मृत्यु हो गई। किसी निश्चित उत्तराधिकारी के अभाव में सामंत एवं उलेमागण ने सुल्तान के चचेरे भाई फिरोज को नया शासक मान लिया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह का 137 वर्षीय लंबा शासनकाल सामान्यतः शांति और सुव्यवस्था का काल रहा। फिरोज ने भी साम्राज्य विस्तार और सैनिक गतिविधियों की तुलना में प्रशासनिक सुधारों और जनकल्याण के कार्यों में तथा विद्या और कला में प्रोत्साहन में अधिक अभिरुचि ली। फिरोज शाह ने अपने समक्ष प्रस्तुत समस्याओं को देखते हुए अपने राजनीतिक उद्देश्य निर्धारित किए। उसके समक्ष सबसे बड़ी समस्या आर्थिक संकट की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समक्ष भी यह समस्या रही थी, परंतु वह इसका समाधान नहीं कर पाया था। इसके विपरीत उसकी प्रशासनिक योजनाओं और सैनिक अभियानों पर हुए खर्च ने आर्थिक संकट को और भी गंभीर बना दिया था। साम्राज्य में विघटन और विद्रोह की समस्या बनी हुई थी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से प्रजा में अमीरों एवं उलेमा में असंतोष थी और शासक की छवि धूमिल पड़ी थी। इसमें सुधार लाना अनिवार्य था। दूसरी ओर फिरोज को अपनी कठिनाइयों और कमजोरियों का भी आभास था। गद्दी पर उसका प्रत्यक्ष अधिकार नहीं था। उसके राजरोहण के समक्ष समय ख्वाजा जहां द्वारा एक अल्पायु बालक को सुल्तान मोहम्मद का पुत्र घोषित कर के दिल्ली में सिंहासन रूढ़ कर दिया गया था। उलेमा एवं सामंतों की सहमति से ही फिरोज इस समय समस्या का समाधान कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर सका था। वह यह भी भलीभांति जानता था कि ये वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली थे और इनकी अवहेलना कर वह शांतिपूर्ण ढंग से शासन नहीं चला सकता था। अतः फिरोज ने विभिन्न वर्गों के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाने का भी निश्चय कर लिया था। अपने शासनकाल में फिरोज ने मुख्यतः आर्थिक सुधारों, कल्याणकारी कार्यों और विद्या एवं कला को प्रोत्साहन दिया। इन उपायों ने विशेषकर जन कल्याण और विद्यानुराग के कारण फिरोज की अत्यधिक प्रशंसा समकालीन इतिहासकार अफीक ने की है। अन्य मध्यकालीन इतिहासकारों ने भी फिरोज को एक आदर्श मुस्लिम शासक माना है। उसे अकबर के पूर्वगामी मुसलमान शासकों में महानतम शासक भी कहा गया है। यद्यपि यह विचार अतिशक्तिपूर्ण है कि फिर भी इतना अवश्य है कि कहा जाएगा कि फिरोज मध्यकालीन इतिहास में पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक था। फिरोज शाह का शासनकाल साम्राज्य विस्तार का काल नहीं रहा। फिरोज शाह ने कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं किया। जो भी आक्रमण साम्राज्य के बचाव के लिए किए गए उसमें भी सुल्तान तथा उसकी सेना की दुर्बलता स्पष्ट रूप से नजर आती है। जो भी आक्रमण साम्राज्य के बचाव के लिए किए गए उनमें भी सुल्तान तथा उसकी सेना की दुर्बलता स्पष्ट रूप से नजर आती है। 1353 से 1354 ईस्वी में उसने बंगाल पर प्रथम अभियान किया, परंतु वह बहुत असफल नहीं रहा। दूसरा अभियान 1359 ईस्वी में हुआ, जिसमें फिरोज ने उड़ीसा तथा जाजनगर पर भी चढ़ाई की, लेकिन कुछ धन लूटने और जाजनगर और पुरी में जगन्नाथ मंदिर के विनाश के अतिरिक्त उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। फिरोज ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा के क्षेत्र में स्थित नागरकोट के दुर्ग पर भी चढ़ाई की। फिरोज ने इस अभियान में ज्वालामुखी मंदिर से अनेक संस्कृत रचनाएं पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त की और नागरकोट के शासक ने उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इनमें से किसी भी अभियान से उसे नए क्षेत्र को जीतने का मौका नहीं मिला। फिरोज का अंतिम अभियान थट्टा में हुआ, जहां 1362 ईस्वी से 1364 ईस्वी के बीच 2 वर्ष के प्रयास के बावजूद वह कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सका। 1365 से 1366 में बहमनी राज्य के असंतुष्ट सामंतों ने उसे अपने शासक के विरुद्ध सहायता मांगी, पर फिरोज ने दक्षिण में हस्तक्षेप न करना उचित समझा। इस प्रकार फिरोज के सैनिक अभियानों से राज्य का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सका, न तो राज्य की सीमा में वृद्धि हुई और न ही इन अभियानों से वैसा अपार धन प्राप्त हो सका जो अलाउद्दीन के समय में प्राप्त हुआ था।
फिरोज के आर्थिक सुधार। फिरोज शाह के आर्थिक सुधारों के क्रम में सर्वप्रथम लगान व्यवस्था में सुधार के उपाय किए, क्योंकि राज्य की आमदनी का मुख्य साधन लगान ही था। यह स्मरणीय है कि फिरोज के पूर्वगामी शासक मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सल्तनत की आर्थिक स्थिति चिंताजनक हो गई थी। प्रशासनिक योजनाओं तथा सैनिक अभियानों पर हुए खर्च ने राजकोष पर अत्यधिक बोझ डाला था। अतः फिरोज के लिए यह अनिवार्य था कि राज्य की आमदनी में वृद्धि करे, लेकिन ऐसा करने के लिए वह जनता पर नए या अधिक कर आरोपित नहीं करना चाहता था, क्योंकि स्थिति में वह अलोकप्रिय हो सकता था। मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगान में वृद्धि के प्रयास और कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास पहले ही असफल हो गए थे। अतः फिरोज तुगलक के आगे बहुत सीमित विकल्प थे। उसने सर्वप्रथम राज्य की आमदनी का प्रामाणिक ब्यौरा तैयार करने के लिए ख्वाजा हेसामुद्दीन को नियुक्त किया, जिसने लगान की आमदनी को 6,85,00,000 टंका निर्धारित किया। इसकी वसूली के लिए कुशल ढंग के प्रयास किए गए। लगान की दर पूर्ववत बनी रही, जो उपज का 1/3 भाग थी, परंतु फुतुहात ए फिरोजशाही के अनुसार यह दर उपज का 5वां भाग थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फिरोज तुगलक ने सिंचाई साधनों के विकास का प्रबंध उत्तम ढंग से किया। विशेषकर उसने दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में लगभग 11 नहरों का निर्माण करवाया, जिससे लगभग 1660 वर्ग मील के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध किया गया। कुएं एवं जलाशय के निर्माण से अन्य राज्यों में और क्षेत्रों में भी सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की गई। इन उपायों द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई, जिससे राज्य, कृषक वर्ग तथा सामान्य जनता तीनों को लाभ हुआ। फिरोज ने राज्य की आमदनी को बढ़ाने के लिए नए साधनों का भी उपयोग किया। उसने लगभग 1200 फलों के बाग लगाए, जिनमें उत्पादित फलों को बाजार में बेचकर लगभग 1,80,000 टंका की प्रतिवर्ष अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की गई। उसने सरकारी खजानों में अतिरिक्त उत्पादन का प्रबंध कर इस सामग्री को बाजार में बेचा और इसमें भी राज्य की आमदनी में वृद्धि हुई। इस उपायों के फलस्वरूप फिरोज ने न केवल आर्थिक संकट पर नियंत्रण प्राप्त किया, बल्कि राजकोष की स्थिति को भी सुदृढ़ बनाया। राज्य की उन्नत आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए फिरोज ने कर प्रणाली में भी सुधार किया। उसने अनेक आपत्तिजनक करों को समाप्त कर दिया। केवल 4 महत्वपूर्ण कर जारी रखे, जिन्हें शरीयत की स्वीकृति प्राप्त थी। ये थे खराज अर्थात भूमि कर, जजिया अर्थात गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर, जकात अर्थात दान संबंधी कर और खम्स अर्थात युद्ध संबंधी कर। इसके अतिरिक्त फिरोज ने सरकारी नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र से सिंचाई कर भी प्राप्त किए। ये उपज राज्य को आर्थिक लाभ पहुँचाने के साथ साथ जनता के बीच सुल्तान की लोकप्रियता बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हुए, और इन सुधारों के लिए फिरोज की प्रशंसा समकालीन एवं आधुनिक इतिहासकारों ने की है। कल्याणकारी राज्य। फिरोज की लोकप्रियता का इससे भी महत्वपूर्ण कारण उसके द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों के रूप में देखा जा सकता है। इस उद्देश्य से फिरोज ने एक दीवाने खैरात या दान विभाग की स्थापना की, जिसके अधीन अनेक कार्य थे। सबसे पहले विद्वानों, बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों, सूफी संतों, विधवाओं, निर्धनों एवं दरिद्रों को आर्थिक अनुदान तथा सहायता देने का प्रबंध किया गया। इसके अतिरिक्त निर्धन और अनाथ युवतियों के विवाह, बेरोजगारों को नौकरी देने और निर्धनों को मुफ्त भोजन और सरकारी खर्च पर उपचार की सुविधा प्रदान की गई। यात्रियों की सुविधा के लिए सराय एवं सड़कें, निर्धनों को मुफ्त खाना देने के लिए लंगर तथा पशुओं के लिए उपचार केंद्रों का निर्माण किया गया। ये सभी उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसके पहले अन्य किसी शासक ने प्रजाहित के लिए इतने व्यापक स्तर पर उपाय नहीं किए थे। सांस्कृतिक योगदान। फिरोज कला एवं संस्कृति जीवन के क्षेत्र में हुई उन्नति में भी सक्रिय योगदान देने में सक्षम रहा। उसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। नहरों, सड़कों, पुलों के निर्माण के अतिरिक्त फिरोज ने नए नए नगरों की स्थापना की, जैसे जौनपुर, हिसार फिरोजा, फिरोजाबाद आदि। उसने राजधानी दिल्ली में अनेक मस्जिदें, मदरसे और मकतब के अतिरिक्त अपने मकबरा और एक शिकारगाह का निर्माण भी कराया। उसने पुराने भवनों की मरम्मत कराई, जिनमें सबसे उल्लेखनीय नाम कुतुब मीनार का है। फिरोज ने अपने दरबार में दो प्रसिद्ध इतिहासकारों को प्रश्रय दिया जो बर्नी एवं अफीफ नाम से प्रसिद्ध हैं। इन दोनों ने ही अपनी ऐतिहासिक रचना को सुल्तान फिरोज शाह को समर्पित किया और दोनों ही रचनाएं तारीख फिरोजशाही के नाम से विख्यात हैं। उसने भारतीय दर्शन और चिकित्सा संबंधी संस्कृत रचनाओं का फारसी में अनुवाद भी करवाया। फिरोज की धार्मिक नीति। मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत फिरोज ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। उसने राज्य को शरीयत के अनुसार चलाने का प्रयास किया। उसकी कर प्रणाली शरीयत पर आधारित रही। उसने मुस्लिम प्रजा के सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा और अपने कल्याणकारी उपायों से उसे लाभान्वित किया। इस्लामी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में अभिरुचि ली। उसने इस्लाम के विपरीत प्रचार को वर्जित कर दिया। इस्लाम विरोधी प्रचार के लिए एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया। उसने जजिया कर कठोरता से वसूला और ब्राह्मणों को भी अब जजिया कर देना पड़ रहा था। अपने सैनिक अभियानों में उसने मंदिरों को लूटा और क्षतिग्रस्त किया। दूसरी ओर उसने हिंदू दर्शन से संबंधित रचनाओं का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। उसे संगीत में भी अभिरुचि थी, जिसे रूढ़ावादी उलेमा इस्लाम के उपदेशों के विपरीत मानते थे। यह परस्पर विरोध फिरोज की नीति में इसलिए था कि उसकी धर्मान्धता केवल उलेमा के तुष्टिकरण के लिए थी। फिरोज की इस नीति से कोई प्रतिक्रिया भी उत्पन्न नहीं हुई। फिरोज के शासन के दोष। फिरोज ने विभिन्न वर्गों को प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की, किंतु उसके द्वारा अपनाई गई तुष्टिकरण की यह नीति राज्य के हित में घातक सिद्ध हुई। इससे सुल्तान का पद शक्तिहीन हो गया, प्रशासन में अव्यवस्था आई और तुगलक साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। फिरोज की यह नीति मुख्यतः उलेमा, सामंत एवं सैनिक वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए थी। उलेमा को संतुष्ट रखने के लिए फिरोज ने एक संकीर्ण धार्मिक नीति का अवलंबन किया। उसने जजिया कठोरतापूर्वक वसूला, अपने सैनिक अभियानों में मंदिरों को तोड़ा और धर्मांधता में अनेक कार्य ऐसे किए जिससे हिंदू प्रजा की भावनाओं को ठेस पहुँचे और इसके राजनीतिक परिणाम हानिकारक सिद्ध हुए। सामंतों के प्रति अपनी कमजोरी का परिचय देते हुए फिरोज ने जागीरदारी प्रथा को वंशानुगत कर दिया। नियुक्तियां भी वंशानुगत रूप से होने लगी। सामंतों को केंद्रीय प्रशासन के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, जिससे उनकी अनुशासनहीनता बढ़ी और राज्य कमजोर हुआ। सैनिकों के प्रति फिरोज ने उदारता की नीति अपनाई। उसने खम्स युद्ध संबंधी कर की प्रचलित दर में संशोधन कर सैनिकों को 80% भाग देना आरंभ किया। सैनिकों की नियुक्तियां भी वंशानुगत आधार पर होने लगी और सैनिकों को भी वेतन जागीर के रूप में दिया जाने लगा। इन सब कारणों से सैन्य व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। फिरोज शाह द्वारा तुष्टिकरण की नीति इसलिए भी अपनाई गई कि वह मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता से अधिक प्रभावित था और अपने कार्यों से किसी भी वर्ग का विरोध प्रकट करने का अवसर नहीं देना चाहता था। अतः उसने सभी वर्गों के प्रति विनम्रता और उदारता की नीति अपनाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस नीति से उसे लाभ पहुंचा और सभी वर्गों का सहयोग उसे प्राप्त हुआ। लेकिन इस नीति के दीर्घकालीन परिणाम घातक सिद्ध हुए और फिरोज की मृत्यु के 10 वर्षों के अंदर तुगलक साम्राज्य का पतन हो गया। निष्कर्षतः यह बात कही जा सकती है कि फिरोज द्वारा प्रशासनिक नीतियों को नई दिशा प्रदान करने का प्रयास आंशिक रूप से ही सफल रहा, जहां उसके आर्थिक सुधारों से राज्य सुदृढ़ हुआ और कल्याणकारी उपायों से सुल्तान पद की प्रतिष्ठा बढ़ी, वहीं उसकी तुष्टिकरण की नीति ने साम्राज्य के पतन को अवश्यंभावी बना दिया। फिरोज ने सैन्य संगठन को भी कमजोर और भ्रष्ट बना दिया। उसने सैनिकों को वेतन के बदले भूमि प्रदान करने की प्रथा पुनः आरंभ कर दी। कई स्थानों पर सैनिक या उसके बेटे बिना सैनिक सेवा किए ही भूमि का उपयोग करते रहे। सेना में सक्रिय सैनिकों की संख्या घटने लगी और अवकाश प्राप्त अथवा पेंशन पाने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। इसका बुरा प्रभाव सैनिक शक्ति पर पड़ा, जो साम्राज्य को बचाए रखने के लिए अनिवार्य थी। सेना की कार्यकुशलता के लिए घोड़ों की उत्तमता अनिवार्य थी, लेकिन सैनिकों के भ्रष्टाचार के कारण सैनिक अफसरों द्वारा घटिया प्रकार के घोड़े और हथियार रखे जाने लगे और इनकी जांच नियमित रूप से नहीं हो रही थी। बड़े अधिकारी भ्रष्ट तरीकों से धन कमाने लगे, अवैध रूप से वसूली करने लगे, परंतु सुल्तान इन्हें रोकने में असमर्थ था। सैन्य संगठन की कमजोरी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण फिरोज की मृत्यु के बाद लगान आदि की वसूली भी कठिन हो गई, जिससे कि राज्य का आर्थिक संकट और भी गंभीर हो गया। इसके अतिरिक्त फिरोज ने सामंतों को भी अनेक प्रकार की सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रदान किए, जिससे कि सुल्तान की शक्ति और भी कमजोर पड़ी। इस प्रकार 38 वर्ष के लंबे राज्यकाल में फिरोज शाह ने जो तरीके अपनाए उसमें राजनीतिक बुद्धिमत्ता की कमी रही। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। सुल्तान के बाद सुल्तान आने लगे, दशा बिगड़ती गई। 1394 ईस्वी तक कन्नौज के पूर्व का भाग भी तुगलक नियंत्रण से निकल गया। मलिक सरोवर ने अनुशासन लाने का प्रयास किया, किंतु हताश होकर उसे भी जौनपुर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उत्तर में खोखरों के विद्रोह हुए, मालवा और खानदेश भी स्वतंत्र हो गए। रही सही कटर कसर 1398 में अमीर तैमूर के आक्रमण ने पूरी कर दी। तुगलक सुल्तान को शरण के लिए गुजरात भागना पड़ा। तैमूर के लौटने पर वह राज्य भी स्वतंत्र हो गया और इस प्रकार 1412 ईस्वी तक तुगलक साम्राज्य का पूरी तरह विघटन हो गया। फिरोज शाह के उत्तराधिकारी 1388 से 1398। फिरोज ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए कमजोर और पतनशील राज्य छोड़ा था। उसकी मृत्यु के पश्चात एक दशक के भीतर ही मेरे राज्य में आंतरिक अस्थिरता, राजनीतिक संयंत्र एवं कुचक्र बढ़ते गए। उसके उत्तराधिकारियों में कोई भी इतना योग्य और सक्षम नहीं था जो साम्राज्य की समस्याओं का समाधान कर पाता। इन शासकों के निजी व्याभिचार के अतिरिक्त सामंत वर्ग की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, फिरोजी दासों के कुचक्र, उत्तराधिकारियों में तुगलक शाह द्वितीय 1388 से 1389, अबू बकर 1389 से 1390, मुहम्मद शाह 1390 से 1494 और महमूद शाह 1394 से 1412 सम्मिलित थे। इसमें महमूद शाह के शासनकाल में 1398-99 में समरकंद के शासक तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य को धराशायी कर दिया। तैमूर के आक्रमण के समय महमूद शाह दिल्ली से पलायन कर गया। 1405 में तैमूर के मृत्युपरांत वह दिल्ली लौटा, जहाँ 1412 तक उसने नाम मात्र ढंग से शासन किया। समाप्त।